मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFAIS के आज 15 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय में मैं आप सबसे पेरिस जलवायु सम्मेलन के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दूसरी घटना को देख लेते हैं। घटना का अखबारों में इसके ऊपर आज काफी कुछ खबरें आई हैं और सच पूछे तो कुछ अखबारों ने तो इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल हुआ यह है कि अभी अभी हमारे यहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। सर्वेक्षण 2019-20 यह जारी की है, इसे हेल्थ मिनिस्ट्री जारी करती है। देखिए, स्वास्थ्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य तो स्वाभाविक हेल्थ मिनिस्ट्री ही जारी करेगी इसे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ये जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है ये काफी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इस मायने में है कि अब आप देखिए कि हम लगातार GDP की बात कर रहे हैं और GDP की दृष्टि से हमारी जो रफ्तार है वो काफी अधिक है, जिसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ये आर्थिक वृद्धि है, मतलब अर्थव्यवस्था की वृद्धि काफी अच्छे तरीके से हो रही है। अगर हम इस कोरोना के पीरियड को थोड़ा सा छोड़ दें, मोनेटाइजेशन के बाद वाली स्थिति को छोड़ दें, तो इससे पहले तो हमारी जो GDP की रफ्तार है 6-7%, जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जो विकसित देश है वो तो 1-1.5% के रह गए हैं। तो GDP अगर 7-8% है तो बहुत अच्छी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये जो GDP की रफ्तार बढ़ रही है ये किनके लिए बढ़ रही है? अगर GDP हमारी आर्थिक वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है तो क्या कारण है कि हमारे यहां लगातार बच्चों का वजन कम होता चला जा रहा है, यानी कि कुपोषण की समस्या है। बच्चों की जो हाइट होनी चाहिए वो कम हो रही है। क्या कारण है कि उनमें खून की जबरदस्त रूप से कमी बढ़ती चली जा रही है? आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से अभी जो 2020 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसमें भारत का 94th स्थान है। और कितने देशों में? 107 देशों में हम नीचे 94वें स्थान पर हैं। मतलब हमारे यहां कितनी बुरी स्थिति है, आप सोच करके देखिए। फिर हम ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साथ ही साथ हम अपने यहां के स्वस्थ नागरिकों की बात करते हैं, हम अपने यहां जो जनांक की जो लाभ है, डेमोग्राफिक डिविडेंट, उनकी बात करते हैं। जनांक की लाभ कब मिलेगा? जब हमारे यहाँ के नागरिक स्वस्थ हों, जो श्रम करने वाले नागरिक हैं वे स्वस्थ हों। लेकिन अगर हमारे यहाँ जो 5 वर्ष के बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि मस्तिष्क का जो 90% जो विकास होता है वो 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, और यही आगे चलकर के देश के नागरिक बनेंगे। और अगर इनका विकास ठीक से हो गया है तो उत्पादकता में 50% तक की वृद्धि होती है। तो अगर हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो स्वाभाविक है कि हम पहले अपने इन बच्चों को देखें। हमारे यहां खाद्यान्न उत्पादन दुनिया भर का हो रहा है, अनाज सड़ता है, तो फिर यह कुपोषण की स्थिति क्यों है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, कि ये जो कुपोषण की स्थिति, इसको आपको थोड़े से दूसरे एंगल से भी देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेन एग्जामिनेशन में इसको लेकर के एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। वो देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे यहां जो भोजन की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी अलग किस्म की है। याद रखिए कि भूख और कुपोषण दोनों अलग अलग है। भूख से तो लगभग लगभग हमारे देश को छुटकारा मिल गया है, लोगों का पेट भर जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या चीज खाने से पेट मिलता है, भरता है, मतलब वो जो खा रहे हैं उसमें पोषक के तत्व सही तरीके से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें आपको यह सुनकर के आश्चर्य होगा कि खासकर जो गुजरात है, गुजरात हमारे यहाँ एक धनी राज्य माना जाता है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न राज्य माना जाता है, ऐतिहासिक काल से रहा है, उसमें जो बच्चों में रक्त की कमी पाई गई है वो 80% है। सोच करके देखिए, 80% बच्चों में रक्त की कमी पाई गई है। तो क्या भूख के कारण नहीं, हमारे यहां जो सिस्टम है खाने का वो उतना बेहतर नहीं है। आप देखिए कि मध्यान्ह भोजन, मिड डे मील चल रहा है, आंगनवाड़ी जैसी योजनाएं चल रही हैं, बकायदे राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है 2018 से, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? दोस्तों, इसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने और दैनिक भास्कर ने आज बाकायदे एडिटोरियल कमेंट लिखे हैं। मैं ये सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि इनमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लगते हों उन्हें आप जरूर नोट करें, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह ऐसा टॉपिक है जिसे लगातार अपडेट करते रहने की जरूरत है। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है पेरिस जलवायु सम्मेलन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत भारत ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है वो क्या है, किस तरीके की है। इसके बाद थोड़ी सी मैं पेरिस जलवायु सम्मेलन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसके तहत भारत को अच्छे प्रदर्शन करने वाले विश्व के 10 देशों में स्थान मिला है। इसका मतलब है कि पेरिस जलवायु सम्मेलन पे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे या यूं कह लीजिए जिन्होंने स्वीकार किया था उनमें से 10 देशों में भारत को स्थान मिलना बहुत मायने रखता है, यानी कि भारत ने जो वहां अपनी प्रतिबद्धता जताई थी भारत उस पर काम कर रहा है। देखिए, जो पेरिस जलवायु सम्मेलन क्या है, मैं आगे चल करके अगर समय रहा तो आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, और यहां मैं खासकर अपने ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन पर आपको एक इंडिपेंडेंट लेक्चर समझाने की दृष्टि से, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समझाने की दृष्टि से प्रोवाइड किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल पर और पेरिस जलवायु सम्मेलन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, राइट। तो दोस्तों, इसका संबंध इस बात से है कि मोटे तौर पर कहें कि CO2 कम करना है, कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन के कारण ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के कारण हो रही है, तो इसे लगातार कम करते चले जाना है। कैसे कम करेंगे, एनर्जी की तो आपको जरूरत है, तो सीधी सी बात है कि कम करने का तरीका यही हो सकता है कि हम जो धारणीय एनर्जी है या ग्रीन एनर्जी जिसे आप कहते हैं, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उस पर जाएं, हवा से बिजली पैदा करें, सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करें, पानी से बिजली पैदा करें, परमाणु से बिजली पैदा करें। तो ये जो हम खासकर कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं या यूं कह लीजिए कि डीजल और पेट्रोल से कर रहे हैं, इसमें कमी आ जाएगी। तो भारत के रिपोर्ट में ये आई है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो हमारी क्षमता है वो पिछले 5 सालों में 226% बढ़ी है, यानी कि हम इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहां तक कि अगर हम केवल सोलर एनर्जी को लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, ये आपको नोट कर लेने चाहिए, 2014 से 2020 के बीच में जो सोलर एनर्जी है उसका उत्पादन हमारे यहां 13 गुना बढ़ गया है, 13 गुना उसमें वृद्धि हुई है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए, पहले जो सौर ऊर्जा थी वो इसलिए बहुत तेजी से विकसित नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत महंगी पड़ती थी, अब ये बहुत सस्ती हो गई है, बल्कि ये महंगी पड़ती थी, इसको लेकर के 4-5 साल पहले सिविल सर्विस मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब इसकी कीमत जो है, जो हमारा थर्मल एनर्जी है पावर प्लांट से जो एनर्जी मिल रही है उसकी तुलना में आधी है। थर्मल पावर प्लांट की जो एनर्जी है वो 4 रुपए प्रति यूनिट है, तो सोलर एनर्जी की 2 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। इसका मतलब है कि भविष्य बहुत अच्छा है। और भारत 2020 के आंकड़े के अनुसार जो हम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, विश्व का जो औसत है उसकी तुलना में 60% कम, ये बहुत बड़ी बात है कि हम 60% कम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो हमारी कैपेसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिए 2020 के लास्ट में हम बात कर रहे हैं, 89 गीगावाट, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम है कि 2030 तक हमको 450 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है, और खासकर ये माना जा रहा है कि जिस गति से हम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करते चले जा रहे हैं उस रफ्तार से हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि इधर हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो 2020 तक जो हमारा कोयले से बिजली उत्पादन का जो प्रतिशत है वो 67% कम हुआ है, यानी कि हम कोयले से अब कम बिजली बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने यह भी घोषणा की है कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ स्टील और सीमेंट जैसी फैक्ट्री में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये हमारे टारगेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे इंग्लैंड ने अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कही है, ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कही है, और वो दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया है। अब हम धीरे 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 इधर बढ़ रहे हैं, और मैं अपने ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जो आपको मंथली जो मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, की जाएगी, उसमें बकायदे इस पर विस्तार से बात भी की गई है। फ्रेंड्स, अब बहुत थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा पेरिस जलवायु परिवर्तन पर, पेरिस समझौता, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। दिसंबर 2016 में पेरिस में COP21 सम्मेलन हुआ था। COP21 इसके बारे में बताने का समय नहीं है। इसके तहत ये समझौता हुआ जिसमें 196 कंट्रीज शामिल हुए थे, और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। और इसमें खासकर ये था कि जो देश हैं वो 2020 तक के लिए कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने की अपनी योजना प्रस्तुत कर दें 2020 तक की, हम ये कदम उठाएंगे। और जो लक्ष्य रखा गया था वो है कि जो वैश्विक तापमान जो वृद्धि हो रही है वो प्री इंडस्ट्रियल जो स्थिति थी उससे 2 सेंटीग्रेड वृद्धि के नीचे रखना है, और जो CO2 का जो उत्सर्जन है 2050 तक 50% और सन 2100 तक 100% कटौती का लक्ष्य रखा गया। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है फ्रेंड्स, स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता योगदान, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इसका फुल फॉर्म है INDC। ये जो है ये खासकर इस समझौते की आत्मा है। देखिए, सुनने में थोड़ा सा कठिन सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगा करके आप केवल शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। स्वैच्छिक मतलब आप पर कोई दबाव नहीं है, आप अपनी तरफ से। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, आप क्या करने जा रहे हैं, कमिटमेंट आप वो बताइए, योगदान कि मतलब आप CO2 को कम करने में क्या योगदान करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से बताइए, अपनी योजना पेश कीजिए। और भारत ने इसी के तहत अपनी योजना पेश की थी, और उसमें उसने कहा था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हासिल कर लेंगे, उसी के तहत जिसकी चर्चा बार बार आप 175 गीगावाट पढ़ते सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। और आपको मालूम है कि जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इससे अपने को विड्रा कर लिया था कि नहीं नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे ऊपर ही सारा जोर दिया जाता है। क्योंकि इसमें एक और भी बात थी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको कुछ सहायता दी जाए, तो उसके लिए बकायदे एक कोष बनाया गया था कि जिसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो धन देंगे और उसका उपयोग फिर ये डेवलपिंग कंट्री अपने यहाँ CO2 के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए करेंगे। तो जो ट्रंप थे उन्होंने इससे अपने को विड्रा कर लिया था, जिसके लिए ट्रंप की काफी आलोचना भी हुई थी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं उज्ज्वल आनंद गया बिहार से और रवि नारायण खापुरा बिहार से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।